नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं शक्ति सिंह। मुख्य समाचार। भारत और फ्रांस ने द्विपक्षीय संबंध विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाए। दोनों देशों ने महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में 21 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मुंबई में द्विपक्षीय वार्ता की। कर्नाटक के वेमागल में H-125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर विनिर्माण की भारत की पहली असेंबली लाइन का उद्घाटन किया। इलेक्ट्रॉनिकी और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, AI समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बुनियादी ढांचा और प्रौद्योगिकी में भारत की वैश्विक पहचान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता तारिक रहमान ने देश के नए प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। ईरान और अमेरिका ने जिनेवा में दूसरे दौर की परमाणु वार्ता की। ईरान ने कहा, दोनों देश मुख्य सिद्धांतों पर सहमत। और T20 क्रिकेट विश्व कप से ऑस्ट्रेलिया बाहर। आयरलैंड और जिम्बाब्वे का मैच बारिश के कारण रद्द। जिम्बाब्वे ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के साथ विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी शुरू करने की घोषणा की। दोनों देशों ने रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिज सहित प्रमुख क्षेत्रों में 21 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत फ्रांस के रिश्तों को तेजी से अनिश्चित होती दुनिया में वैश्विक स्थिरता के लिए एक ताकत बताया। मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये साझेदारी पारंपरिक कूटनीति से आगे बढ़कर लोगों की साझेदारी बन गई है।
फ्रांस भारत के सबसे पुराने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में से एक है और प्रेसिडेंट मैक्रों के साथ मिलकर हमने इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अभूतपूर्व गहराई और ऊर्जा दी है। इस विश्वास और साझा विजन के आधार पर आज हम अपने संबंधों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में स्थापित कर रहे हैं। ये पार्टनरशिप केवल स्ट्रेटेजिक नहीं है, आज के उथल पुथल से भरे युग में यह ग्लोबल स्टेबिलिटी और ग्लोबल प्रोग्रेस की पार्टनरशिप है।
प्रधानमंत्री ने भारत में एयरबस H-125 हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन के उद्घाटन को मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विजन का बड़ा उदाहरण बताया।
हमें गर्व है कि भारत और फ्रांस मिलकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक उड़ान भरने वाला विश्व का एकमात्र हेलीकॉप्टर भारत में बनाएंगे और ये पूरे विश्व को एक्सपोर्ट भी करेंगे। यानी इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप नोज No boundaries. It can reach from deep oceans to the tallest mountain.
श्री मोदी ने हाल ही में यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौते का जिक्र करते हुए फ्रांस को हिंद महासागर क्षेत्र में एक जरूरी साझेदार बताया।
वर्ष 2026 भारत और यूरोप के संबंधों में एक टर्निंग पॉइंट है। कुछ ही दिन पहले हमने यूरोपियन यूनियन के साथ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और महत्वाकांक्षी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और फ्रांस संबंधों में अभूतपूर्व गति लाएगा।
राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि भारत फ्रांस का रिश्ता आपसी भरोसे के ऐसे स्तर पर पहुंच गया है जो आज दुनिया में अनोखा है। श्री मैक्रों ने कहा कि भारत वैश्विक नवाचार में भाग ही नहीं लेता बल्कि इसका नेतृत्व भी करता है।
Before I talk about the future, let me start.
भविष्य के बारे में बात करने से पहले मैं वर्तमान के एक तथ्य से शुरुआत करता हूं, जिसे कम नहीं आंका जाना चाहिए। अल्फाबेट के CEO भारतीय हैं, माइक्रोसॉफ्ट के CEO भारतीय हैं, IBM के CEO भारतीय हैं, एडोब के CEO भारतीय हैं, एडोब ऑल्टो नेटवर्क्स के CEO भारतीय हैं, नोवार्टिस के CEO भारतीय हैं और फ्रांस के सबसे प्रतिष्ठित ब्रांड्स में से एक चैनल की CEO इसी राज्य के कोल्हापुर की लीना नायर है। इसलिए भारत वैश्विक नवाचार में सिर्फ भाग ही नहीं लेता बल्कि इसका नेतृत्व भी करता है।
भारत फ्रांस नवाचार वर्ष का शुभारंभ करते हुए श्री मैक्रों ने कहा कि दोनों देश अब सिर्फ सामान ही नहीं बल्कि आइडिया का व्यापार भी करते हैं। इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति ने मुंबई में द्विपक्षीय वार्ता में रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान सहित कई विशेष क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा की। राष्ट्रपति मैक्रों ने मुंबई में ऐतिहासिक ताजमहल पैलेस होटल में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता प्रकट की। नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दूसरे दिन आज सामाजिक भलाई के लिए ग्लोबल साउथ में सहयोग, एआई गवर्नेंस, नैतिकता और नियामक ढांचे, स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई और डेटा नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर केंद्रित कई विषयों पर पैनल चर्चाएं आयोजित की गई। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि विश्वभर में भारत की नई पहचान इस समिट में स्पष्ट दिखाई दे रही है।
नौजवानों में बहुत उत्साह है एआई के लिए और जिस तरीके से यहाँ पर एनर्जी दिखाई देती है उस एनर्जी से स्पष्ट है कि विश्व भर में भारत की जो पहचान बनी है एआई के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व भर में देश की नई पहचान बनाई है वो एकदम स्पष्ट इस दुनिया के सबसे बड़े एआई समिट में दिखाई देता है।
श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष निमंत्रण पर एआई इम्पैक्ट समिट में भाग लेने के लिए आज दोपहर भारत रवाना हुए। राष्ट्रपति दिसानायके बृहस्पतिवार को सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। बांग्लादेश में तारिक रहमान ने आज नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। हमारे संवाददाता ने बताया कि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व वाले अंतरिम प्रशासन के अंतर्गत लगभग 18 महीने की अनिश्चितता के बाद ये नया राजनीतिक अध्याय है।
राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने ढाका के जातीय संसद भवन के साउथ प्लाजा में नए प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई। बाद में 25 कैबिनेट मंत्रियों और 24 राज्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। मंत्रालयों का बंटवारा जल्द होने की उम्मीद है। समारोह में भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विदेश सचिव विक्रम मिश्री मौजूद रहे। कार्यक्रम में वरिष्ठ राजनीतिक नेता और सेना के शीर्ष अधिकारी भी उपस्थित थे। शपथ के बाद बिरला ने संसद भवन में नए प्रधानमंत्री से शिष्टाचार मुलाकात की। तारिक रहमान पूर्व राष्ट्रपति रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं। उनकी शपथ के साथ लगभग दो दशक बाद बीएनपी के नेतृत्व वाली सरकार की वापसी हुई है।
नवल सिंह परमार, विश्व समाचार, ढाका।
ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका के साथ वार्ता का दूसरा दौर स्विट्जरलैंड की जिनेवा में संपन्न हुआ। वार्ता के बाद मीडिया से बात करते हुए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा कि ईरान और अमेरिका परमाणु वार्ता के दूसरे दौर में मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांत पर सहमत हो गए हैं।
दोनों पक्षों के लिए जिनेवा तक का रास्ता आसान नहीं रहा है। दोनों पक्षों के बीच पिछले साल जून में छठे दौर की बातचीत होनी थी, तभी इसराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी शुरू कर दी। इसके बाद अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स भी हमलों में शामिल हो गए। ईरान ने तब कहा था कि उसने यूरेनियम संवर्धन रोक दिया है। इस विवाद की जड़ ईरान का परमाणु कार्यक्रम ही है। अमेरिका और इसराइल का मानना है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की क्षमता हासिल करने की कोशिश कर रहा है। उधर ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण उपयोग के लिए है। हालांकि उसने यूरेनियम को विद्युत उत्पादन के लिए आवश्यक स्तर से कहीं अधिक और बम के लिए आवश्यक शुद्धता के करीब संवर्धित कर लिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए जया भारती।
टी20 क्रिकेट विश्व कप में बड़े उलटफेर में ऑस्ट्रेलिया प्रतियोगिता से बाहर हो गया है। ग्रुप बी में आयरलैंड और जिम्बाब्वे के बीच आज मुकाबला बारिश के कारण रद्द होने से जिम्बाब्वे ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया और ऑस्ट्रेलिया की टीम प्रतियोगिता से बाहर हो गई। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे और श्रीलंका से हार का सामना करना पड़ा था। इस बीच मुंबई में नेपाल ने स्कॉटलैंड के साथ खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक 20वें ओवर में 3 विकेट पर 167 रन बना लिए हैं। स्कॉटलैंड ने नेपाल को 171 रन का लक्ष्य दिया था। न्यूजीलैंड ने कनाडा को 8 विकेट से हराकर सुपर 8 में जगह बनाई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और फ्रांस ने द्विपक्षीय संबंध विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाए। दोनों देशों ने महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में 21 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मुंबई में द्विपक्षीय वार्ता की। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि एआई समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बुनियादी ढांचा और प्रौद्योगिकी में भारत की वैश्विक पहचान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता तारिक रहमान ने देश के नए प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और टी20 क्रिकेट विश्व कप से ऑस्ट्रेलिया बाहर हुआ। आयरलैंड और जिम्बाब्वे का मैच बारिश के कारण रद्द। जिम्बाब्वे ने सुपर 8 के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।